मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं किस विषय पर बात करूंगा, इसका अनुमान आप बिल्कुल लगा सकते हैं, बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। और यदि आपने लगा लिया होगा तो आप बिल्कुल सही होंगे। जिस तरह का वातावरण बना हुआ है भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, तो आज आप अफगानिस्तान के अतिरिक्त और किस विषय पर बात करना चाहेंगे? किसी भी विषय पर नहीं। कल के न्यूज चैनल से देख लीजिए, इसी समाचार से भरे हुए थे। आज के अखबार देख लीजिए, इसी समाचार से लगभग लगभग भरे हुए हैं। और डेफिनेटली यह स्वाभाविक भी है। दोस्तों, आज मैं इस घटना के माध्यम से आप सबसे यह बात करने जा रहा हूं कि यह चैप्टर आप किस तरीके से अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। इसे आप इस दूसरे रूप में यदि कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि मैं आपके सामने एक ऐसा मॉडल पेश कर रहा हूं जिसे आप फोकस्ड टाइप स्टडी का नाम दे सकते हैं। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए फोकस्ड स्टडी करना बेहद जरूरी है। तो मैं फोकस्ड स्टडी आप कैसे करेंगे, उसके क्या तत्व होंगे, इस पर बात करने नहीं जा रहा हूं। आप यूं कह लीजिए कि अफगान में जो अभी स्थितियां बनी हुई हैं, इसको लेकर के सिविल सर्विस में आप फोकस्ड तरीके से प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आइए इस पर कुछ बातें करते हैं। देखिए, दुनिया भर की घटनाएं घट रही हैं, घंटों घंटों तक न्यूज चैनल्स पर समाचार आ रहे हैं और जो इसके एक्सपर्ट हैं वो अपनी अपनी बातें भी कह रहे हैं, कहेंगे ही। अखबारों में खूब लिखा जा रहा है, एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और आगे भी लिखे जाते रहेंगे। आपके सामने अब संकट ये खड़ा होता है कि आप इस बियावान जंगल में, जी हाँ, मैं बियावान जंगल ही कहूंगा, एक ऐसा जंगल जो आप यूं कह लीजिए या तो बिल्कुल वीरान है या इतना घना है कि वहां रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप अपने लिए कैसे रास्ता निकालेंगे? आपके दिमाग में ये बहुत साफ होना चाहिए कि आप जिस टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं उस टॉपिक कर्व की वैल्यू आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है। हम अफगान की समस्या पर बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, है ना। हिस्ट्री में ठीक है, जब आप फ्रीडम मूवमेंट का पढ़ेंगे, फ्रीडम मूवमेंट नहीं बल्कि आप यूं कह लीजिए कि जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो उस समय अफगानिस्तान की चर्चा बीच बीच में आती है, अफगान युद्ध की बात होती है और फिर आप कोई एक जगह ये भी लिखा हुआ मिलता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डुरंड रेखा बनाई गई है वो अंग्रेजों ने ही बनाई है, ये बस इतना ही और बाकी ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है इतिहास की दृष्टि से। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन की दृष्टि से ये पहले भी महत्वपूर्ण था और अब भी महत्वपूर्ण है। फिर यदि आप अच्छी तैयारी करने वाले हैं तो थोड़ा सा आप पीछे जाकर के जो अनसॉल्व्ड पेपर हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उन्हें देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अफगानिस्तान से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। आपको शायद कोई प्रश्न मिल जाए, शायद नहीं मिलेगा ही, प्रश्न मिल जाए तो आपको एक दिशा मिल जाएगी कि अच्छा, अफगानिस्तान पर यदि प्रश्न पूछा गया अब तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपको देखिए, मैं उस घने सघन जंगल में से रास्ता बता रहा हूं कि आप रास्ता कैसे निकालेंगे, रास्ता बनाने का मैं तरीका बता रहा हूं, क्योंकि एक बार अगर रास्ता बन जाए तो फिर चलना आसान हो जाता है और जब चलना आसान हो जाता है तो जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच ही जाते हैं, राइट। चलिए, हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखें और उसमें आपको अफगानिस्तान न मिले, हो सकता है कि न मिले, तब आप क्या करेंगे? फिर जब आप अपने सिलेबस से मैच करेंगे तो आप सिलेबस में पाएंगे कि नहीं, अफगानिस्तान की सीधे सीधे बात तो नहीं की गई है लेकिन भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात की गई है, वो सिलेबस में मेंशन है। तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के लेफ्ट साइड में अगर आप जाकर के देखेंगे तो बकायदे हमारी सीमा रेखा है, लगभग 106 किलोमीटर की सीमा रेखा हमारे अफगानिस्तान के साथ है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो जो सीमा रेखा है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन सीमा रेखा तो है, वो तो हमारा ही क्षेत्र है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, तो हमारा पड़ोसी देश तो है। और अगर चलिए हम सीधे भी ले लें, पाकिस्तान से ही होकर के ले लें, तो कितनी दूरी पर है? पड़ोसी का मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल उसकी दीवाल और हमारी दीवाल सटी हुई ही हो, उस दीवाल के से सटे हुए मकान के बाद भी जो है वो भी एक प्रकार का पड़ोसी ही तो है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। तो फिर अब आप देखिए कि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको एक बात क्लियर होगी कि जो अफगानिस्तान में जो भी समस्या अभी है, ठीक है, उस समस्या के केंद्र में है, उसे तो हमें जानना ही होगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वो भारत के संदर्भ में होगी, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध कैसे हैं और अभी जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, भारत इसका मुकाबला कैसे कर सकता है। अगर आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई तो आप मान करके चलिए कि आपने रास्ते की तलाश कर ली कि अच्छा, मुझे इस डायरेक्शन में अफगानिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है, इस टॉपिक की तैयारी करनी है। अब आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे आप फोकस्ड होते चले जा रहे हैं, है ना। अदरवाइज तो अखबार लिख रहे हैं, पता इतिहास लिख रहे हैं और पूरा फिर आजादी के बाद अफगानिस्तान में कैसे सत्ता में कौन कौन आया, क्या क्या हुआ, फिर रशिया, फिर अमेरिका, फिर बकायदे फिर लोग तालिबान का कैसे जन्म हुआ है, मुजाहिदीन का, और उसके कैसे वो कैसे काम करता है और कैसे उसका विकास होता चला गया, ये सब अखबार वाले लिख रहे हैं और वो गलत नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स आप देख लीजिए, यूट्यूब चैनल्स भरे हुए हैं, कोई तालिबान के बारे में बता रहा है, कोई अफगानिस्तान का इतिहास बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ठीक है, वो अपने अपने ढंग से बता रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि वो जो बता रहे हैं वो आपके कितने काम का है। हाँ, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बता रहे हैं, उन्हें डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जरूरत को दृष्टिगत रखते हुए ही बताएं, न कि जो मुझे आता है वो मैं सब बताता हुआ चला जाऊं, क्योंकि ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसके दिमाग की क्षमता है। हम अपने दिमाग को फालतू के कचरा भरने से बचाने की कोशिश करें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब आप देखिए कि फिर अब नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये क्लियर हो गया कि भारत के संदर्भ में ही पूछे जाने की संभावना होगी। दूसरी जो बात होगी वो ये कि अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वो कितना बड़ा होगा, तो कहने की जरूरत नहीं है कि मिनिमम 150 वर्ड्स और मैक्सिमम 250 वर्ड्स, औसतन 200 शब्द। इसका मतलब है कि केवल 200 शब्द में ही आपको अपना उत्तर लिखना है। अब आपके दिमाग में और चीजें क्लियर हो गई, इसका मतलब है कि आपको फालतू की चीजें जाननी नहीं है, केवल इस तरीके की चीजें जाननी है कि अगर प्रश्न पूछ लिया गया भारत के संदर्भ में तो आप अपनी तरफ से उत्तर लिख सके। देखिए, बना बनाया उत्तर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ना किसी एडिटोरियल कमेंट में मिलेगा, न एडिटोरियल आर्टिकल्स में मिलेगा और न किसी मैगजीन में मिलेगा। वो आपको, आप यूं कह लीजिए कि वो एक प्रकार से आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, और बिना रॉ मटेरियल के आप फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार कैसे करेंगे। वो रॉ मटेरियल आपको दे रहे हैं, आपको तथ्य दे रहे हैं, अब उन तथ्यों का आप इस्तेमाल कीजिए। तो जो मैगजीन है, अखबार है, यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, या कह लीजिए मैं ही क्यों ना हूं, तो हम यही प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने अनुभवों के आधार पर। तो दोस्तों, जब आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो केवल 200-250 शब्दों में ही अपनी बात कहनी है, तो फिर जो रॉ मटेरियल आपको दिया जा रहा है, आप उसमें से चुनते हैं कि मैं क्या क्या चुनूं जो मेरे लिए रॉ मटेरियल का काम करें। तो फिर आप देखिए कि क्या क्या चुनते हैं, आपको क्या क्या जानना चाहिए। देखिए, मैं धीरे धीरे क्रमशः उस सघन जंगल से, उस बियावान जंगल से धीरे 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 रास्ते के ऊपर पहुंच करके अब फिर आपको डायरेक्शन बता रहा हूं कि अब आपको क्या क्या जानना है, या यूं कह लीजिए कि मैं माइलस्टोन क्रिएट कर रहा हूं, मील के पत्थर बना रहा हूं, पड़ाव बता रहा हूं कि ये आपको केवल जानना है। दोस्तों, पहले डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में जान लेना चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि, और बहुत थोड़ा, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही थोड़ा, क्योंकि आप अफगानिस्तान का इतिहास पढ़ने लग सकते हैं कि पढ़ो नहीं। अगर मैं पृष्ठ की भाषा में बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा आधा पृष्ठ, हाँ अभी आपको आधा पृष्ठ मिलेगा कहां, ये एक चुनौती हो सकती है, बस आधा पृष्ठ कि ये जो अफगानिस्तान है ये किस तरह का राष्ट्र है ना, इसकी भौगोलिक स्थिति, इसका चरित्र, इसका इतिहास किस तरीके का रहा है, ताकि एक अनुमान लग जाए कि अच्छा, अफगानिस्तान इस तरह का देश है और ये इसकी मूल समस्याएं हैं, बस बहुत ही संक्षिप्त में। इसके बाद फिर आपको जानना होगा कि ये तालिबान क्या है, तालिबान सत्ता में आया है, समस्या के मुख्य की जड़ वही है आज, तो आपको जानना चाहिए कि तालिबान क्या है, उसको भी बहुत ही संक्षिप्त में। अब ये नहीं कि इतने सन में इसकी स्थापना हुई और इसने इसकी स्थापना की और फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, नॉट इट ऑल। बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही थोड़ा सा कि ठीक है, तालिबान का जन्म क्यों हुआ? बस इसलिए इसका जन्म हुआ क्योंकि जब रशिया अफगानिस्तान में प्रवेश कर गया था तो इसका मुकाबला करने के लिए वहां के जो मुजाहिदीन थे उन्होंने उनको बकायदे हथियार और धन और इसकी सप्लाई की गई कुछ राष्ट्रों के द्वारा, जिसमें अमेरिका का भी नाम है, और इसी में से फिर बाद में तालिबान का जन्म हो गया। आतंकवादी संगठन है, तालिबान का चरित्र क्या है, ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। और एक लाइन में क्लियर हो सकता है कि बेसिकली यह कट्टर धार्मिक विचारों से प्रेरित एक कबीलाई संगठन है। अब आप इसमें देखिए कि कितने सारे चरित्र आ गए, कट्टर धार्मिक विचारों से। यदि कट्टर शब्द आप नहीं हटाएंगे, धार्मिक विचार अच्छी बात है लेकिन कट्टरता जब आ जाती है तो मुश्किल हो जाती है। कट्टर धार्मिक विचारों से प्रेरित एक कबीलाई संगठन है। कबीलाई संगठन का मतलब फिर आप समझ सकते हैं, जो कबीले का अपना एक जो चरित्र होता है उस तरह का एक संगठन है। और बेसिकली जो अफगानिस्तान है वहां बहुत सारे कबीले ग्रुप ही काम करते हैं। तो ये तालिबान, और फिर तालिबान कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, आधे पेज में आप तालिबान को समझ लीजिए, बस खत्म हो गई बात। अफगानिस्तान में इससे पहले भी वो कब्जा कर चुका है बहुत बड़े हिस्से पर, सरकार बन चुकी है इसकी, बस। इसके बाद फिर आइए वर्तमान समस्या क्या है। वर्तमान समस्या की शुरुआत हो जाती 2001 से, जब विश्व ट्रेड सेंटर पर बकायदे इन्हीं के संगठन का एक जो हिस्सा है उसने वहां के ट्विन टावर और उन सबको नष्ट किया। फिर अमेरिका खड़ा हुआ, अमेरिका ने कहा कि हम तालिबान को नष्ट कर देंगे। फिर उसने ओसामा बिन लादेन को मारा, अपनी सेनाएं भेजी और 20 साल तक वहां ठीक ठाक चलता रहा। अब अमेरिका में ये मांग की जाने लगी कि भैया हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप देखिए कि डेटा आ रहे हैं, 72 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, और हमारे इतने सैनिक मारे जा रहे हैं, हमें मिल क्या रहा है। तो अमेरिका को लगा कि अब सम्मानजनक तरीके से वहां से वापस आ जाना चाहिए। ट्रंप के समय में इसकी शुरुआत हो गई थी, बाइडन जी ने उसे पूरा कर दिया, अमेरिका की सेना वापस चली गई, तालिबान को मौका मिल गया, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज फिर शुरू कर दी और सत्ता पर अधिकार कर लिया, खत्म तालिबान, खत्म। इसके बाद वैश्विक परिदृश्य। वैश्विक परिदृश्य का मतलब है कि आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि खासकर अफगानिस्तान की समस्या को लेकर के विश्व की दृष्टि क्या है। तो देखिए बहुत क्लियरली आपको पढ़ने को मिल रहा है कि जो पाकिस्तान है वो तो सीधे सीधे इससे जुड़ा हुआ है, उसने तो स्टेटमेंट ही दे दिया है कि पाकिस्तान ने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो पाकिस्तान है, चीन है, रशिया है, ये सब तालिबान के पक्ष में है। अमेरिका, जो दूसरे जो राष्ट्र हैं यूरोप के राष्ट्र, वो सब तालिबान के विरोध में है। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से देश किस किस गुट में शामिल है, जो प्रमुख देश है। अब आखिरी में आता है भारत, भारत और अफगानिस्तान के संबंध, बस दैट्स ऑल, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। और इन सब पर अगर आप नोट्स बनाएंगे तो हार्डली 2 पेज का नोट बनेगा, बस दैट्स ऑल। दोस्तों इसे ही कहा जाता है फोकस्ड प्रिपरेशन। और मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जब जहां तक भारत अफगानिस्तान के संबंध का सवाल है, दोस्तों 2 भागों में इसके लेक्चर्स हैं। पहला है अफगान गृह युद्ध, किस तरह से लगातार अफगान गृह युद्ध में फंसा रहा है, इससे आपको पूरी पृष्ठभूमि की जानकारी मिल जाएगी। और फिर भारत अफगानिस्तान के संबंधों पर एक इंडिपेंडेंट लेक्चर आपको दिया गया है। यदि आप इस विषय पर अभी तैयारी कर रहे हो तो बेहतर है कि उन्हें सुन करके और फिर इसको आगे तैयार करें। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद दे रहा हूं, और इसमें से 2 मित्रों के नाम हैं दीपा और शिवानी पवार, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।